جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھا کرتے ہیں، معارف القرآن کی جلد نمبر 3 میں سے، اور جو آیات کی تلاوت کی گئیں آیات نمبر 90 سے لے کر کے 94 تک، 90 سے لے کے 94 تک، تو ان کے خلاصہ تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، تو پیج نمبر 392 کے اوپر تھے، آپ کے سامنے سکرین پر بھی شیئرڈ ہوگا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جنہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کری بشر کے اوپر، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کس نے پھر یہ کتاب نازل کری جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئی تھی بطور نور کے اور بطور ہدایت کے انسانوں کی طرف، جس کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے؟ تجعلونہو قراطیسہ، تم نے اس کو صفحات کی ہی شکل میں اب تک رکھا ہوا ہے، تبدونہا وتخفونہ کثیرا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت وجہ بھی بتا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ساری حرکتوں کو بھی جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس علم کے ساتھ فرما رہی ہیں ان لوگوں کے بارے میں اپنا علم کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، کیونکہ تمہارا مقصد ہوتا ہے کہ دکھاؤ وہ چیزیں جو کہ تم دکھانا چاہتے ہو اور باقی چیزوں کو تم چھپا لو. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر آخری بات جو کل کلاس میں ہو رہی تھی کہ بدقسمتی سے ہم بھی جو ہے وہ اس قسم کے گناہ بہت کرتے ہیں کہ دین کو جو ہے نا وہ سلیکٹیولی استعمال کرتے ہیں، جو چیز جو ہے وہ ہمیں سوٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو تو ہم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے تو ہم تذکرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو چیز ہمارے خلاف جا رہی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ ہم چھپانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا جو شخص ہوتا ہے تو پھر وہ اہل حق میں سے نہیں ہوتا ہے، یہ اہل باطل میں سے ہوتے ہیں جو علم کے باوجود ایسا گمراہی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسا غلط کام جو ہے نا لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کا کام یا کنفیوز کرنے کا کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے جو علماء ہوتے ہیں وہ علماء سو کہلاتے ہیں، علماء باطل کہلاتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے یہ علماء جو تھے یہ سارے کے سارے تقریباً سارے کے سارے علماء سو میں سے تھے، علماء باطل میں سے تھے. ٹھیک ہے، تو ایسی حرکت جو ہے نا وہ ہمیں ہرگز ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کر رہے ہیں تو اس پہ فوراً سے توبہ کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے کہ اللہ معاف کر دیجئے، اب تک جو میں نے کیا ہے تو آئندہ نہیں کروں گی، آئندہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، مرد عورت دونوں مخاطب ہیں یہاں پر، تو ہم آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، اس کو کہتے ہیں توبہ کر لینا. تو خلاصہ تفسیر میں فرمایا کہ یعنی یہ جو اسی کی بات ہو رہی تھی کہ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤکم، اور جو تم کو سکھلا دی وہ چیزیں، یعنی اس تورات کے ذریعے سے تم کو وہ چیزیں سکھلا دی تھیں جو کہ نہ تمہیں پہلے پتا تھیں نہ تمہارے آباؤ اجداد کو پہلے پتا تھیں، پھر ان کے جواب کا انتظار کرنے سے پہلے ہی آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے آپ اللہ. ٹھیک ہے، من انزل الکتاب کا جواب اللہ، آپ خود ہی جواب دے دیجئے، انہوں نے جواب نہیں دینا آپ کو کیونکہ ان کی تو سانپ سونگ گیا ہے ان کو، تو इनको तो सांप सूंघ गया है, इनकी तो चुप लग गई है, या ये तो बगले झांकना शुरू हो गए हैं, इन्होंने आपको क्या जवाब देना है? हालांकि पता है इनको क्या जवाब है इसका, लेकिन इन्होंने नहीं जवाब देना, आप खुद ही जवाब दे दीजिए। अल्लाह, ठीक है। सुम दरहुम फी खौज़िहिम यलअबून, फिर छोड़ दीजिए उनको अपनी खराफात में, वो खेलते रहे। तो उसकी तफसीर में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मतलब ये कि जिस तौरात की ये हालत है कि उसको अव्वलन तो तुम मानते हो कि हाँ ये अल्लाह ने नाजिल करी है, तो तुम मानते हो, दूसरे बवजह नूर व हुदा होने के मानने के काबिल भी है ये। यानी अल्लाह ताला ने नूरन व हुदन का लफ्ज क्यों फरमाया कि भाई ये मानने के काबिल भी है, क्योंकि इसमें रूहानी रोशनी है कि जिसमें फिर इंसान को रास्ता नजर आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये नूर है, ये नहीं कि तौरात के औराक में से कोई नूर की शुआएं निकलती थी और कमरा जो है वो पूरा का पूरा रोशन हो जाता था, और रात की तारीकी में अगर आप तौरात की किताब निकाल दें तो तौरात की किताब में से जो है वो बल्ब जलना शुरू हो जाता था। नहीं, नूर का मतलब ये नहीं होता, ठीक है। जो इस तरह से नूर का लफ्ज, जैसे नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी नूर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि रात की तारीकी में रोशनी हो जाती थी जहां नबी अलैहिस्सलाम जाते थे, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। बल्कि जो हिदायत मिलती थी, जो 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 इल्म मिलता था नबी अलैहिस्सलाम से, या यहाँ पर तौरात से का जो जिक्र है, तो उसमें इंसान की यानी गुमराही दूर हो जाती है, उसको रास्ता नजर आना शुरू हो जाता है वगैरह। तो वो इस काबिल भी है, नूर हो और हुदा होने के मानने के काबिल भी है। तीसरे, हर वक्त तुम्हारे इस्तेमाल में है, गो वो इस्तेमाल शर्मनाक है, यानी तुमने इसके साथ एक शर्मनाक इस्तेमाल यानी रवैया रखा हुआ है, लेकिन इसकी वजह से गुंजाइश इनकार तो नहीं रही ना, ठीक है। यानी तुम्हारा रवैया खराब है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम जो है वो अब इस हकीकत का ही इनकार करना शुरू कर दो कि नहीं, अल्लाह की तरफ से कोई चीज नाजिल नहीं हुई। चौथे, तुम्हारे हक में वो बड़ी नेमत और मन्नत की चीज है, मन्नत यानी एहसान की चीज है तुम्हारे लिए, ठीक है। इसी की बदौलत तुम आलिम बने बैठे हो, इसी तौरात की बुनियाद पर तो तुम आलिम बने हो ना, तौरात ही के आलिम हो ना, ठीक है। इस हैसियत से भी इसमें गुंजाइश गुंजाइश इनकार नहीं है, ये बतलाओ कि इसको किसने नाजिल किया है। और चूंकि इस सवाल का जवाब ऐसा मुतय्यन है कि वो लोग भी उसके सिवा इसके सिवा कोई जवाब ना देते, इसीलिए खुद ही जवाब देने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है कि आप वही कह दीजिए, आप ही कह दीजिए, या आप वही कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने किताब मस्कूर को नाजिल फरमाया है, ठीक है। तो ऐसा भी कि जवाब जो है वो इसके अलावा कोई है ही नहीं इनके पास, तो इनके सब इंतजार करने के बजाय आप खुद ही इसका जवाब दे दीजिए कि अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है, ठीक है। तो ये भी एक असलूब है बात करने का, यानी जब दलील इतनी पक्की होती है ना, इतनी स्ट्रांग दलील होती है कि अगले बंदे के पास इनकार की गुंजाइश ही ना हो, ठीक है, तो बात करने वाला खुद ही जो है ना फिर अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए जवाब भी दे देता है, ठीक है, क्योंकि दलील ही इतनी स्ट्रांग थी। तो फरमाया कि और इससे उनका दावा आम बातिल हो गया, दावा आम बातिल हो गया, यानी जो भी है दावा आम बातिल हो गया, दावा आम बातिल हो गया, यानी उनके जो है ना, यानी वही बात जो कल हो रही थी कि हर नबी को अल्लाह ताला ने सुरखुरुई अता फरमाई। कौन सी सुरखुरुई अता फरमाई? दावे की सुरखुरुई अता फरमाई, यानी उनकी दावा ऐसा होता था, उनका उनकी दलील ऐसी होती थी, उनकी बताई हुई इंफॉर्मेशन ऐसी होती थी कि इनकार की गुंजाइश ही किसी के पास नहीं होती थी, ठीक है। ये तो हर नबी को मिला, ये वाली कामयाबी हर नबी को मिली, इंटेलेक्चुअल कामयाबी, लेकिन जो फिजिकल कामयाबी है वो हर नबी को नहीं मिली, किसी को मिली किसी को नहीं मिली। किसी को दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली, जकरिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया, यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया, ठीक है। तो दावे आम जो है ना वो काफिर का बातिल हो जाता है। फिर ये जवाब सुनाकर उनको उनके मशगले में बेहूदगी के साथ लगा रहने दीजिए, ठीक है, उनको लगे रहने दीजिए, यानी ला इकराह फिद्दीन, आप उनको पकड़ करके मार मार करके तुम उनको मुसलमान नहीं बना सकते, ये तो आपके करने का काम ही नहीं है। हिदायत तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, तो अब आप उनके साथ बात ही कर सकते हैं ना, ठीक है। और जब अल्लाह का हुक्म आएगा तब जिहाद करेंगे, वैसे कोई थोड़ी बैठे बैठाए हर वक्त जो है वो मारना शुरू करते हैं अगले बंदे को। क्यों नहीं बात मान रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे काम की बात बता रहा हूँ, तुम्हारे फायदे की बात बता रहा हूँ, क्यों नहीं मान रहा, चलो तलवार मारूंगा मैं तुम्हें, गोली मार दूंगा मैं तुम्हें। नहीं, हम समझते हैं ना, बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त जिहाद करते रहते थे, जो बात नहीं मानते थे उसको मार देते थे। जैसे आज यही तवक्कु करते हैं उलमा से, यही तवक्कु करते हैं ना उलमा से कि जो बात नहीं माने यानी अजीब बात यह है कि जो उलमा की बात नहीं माने, उलमा की बात नहीं माने उसको नहीं मारो, बल्कि जो मेरी बात नहीं माने ना, यानी आज क्या रवैया है मुसलमान का, ये जो हमारी बात नहीं मान रहा उलमा को चाहिए कि उसको मारे। मजे की बात तो ये है ना, जो हमारी बात नहीं मान रहा तो उलमाए कराम को चाहिए कि उसको मारे, उसको मारें, वो क्यों नहीं मारते, राइट। यानी ये नहीं कि जो उलमा की बात ना माने तो उलमा को चाहिए कि उनको मारे, उनको मारें, ये नहीं कि जो उलम, आप समझ रहे क्या क्या पिक्चर सामने आ रही है, राइट। क्या अवाम का ये भी डिमांड नहीं है, ये भी डिमांड नहीं है कि जो उलमा की बात नहीं मानता तो उलमा को चाहिए कि उनको मारें, ये भी गलत डिमांड होती। अगर होती डिमांड तो ये भी गलत डिमांड होती, लेकिन मजे की बात ये है कि ये डिमांड है ही नहीं। डिमांड ये है कि जो हमारी बात नहीं मानता ना, उलमा को चाहिए कि उनको मारें। अजीब, बिकॉज दैट वे अवाम विल बी सब्जेक्ट टू द पिटाई। एग्जैक्टली, हाँ, अगर अगर वो ये कहना शुरू हो जाए ना कि जो उलमा की बात नहीं मानता तो उलमा को चाहिए कि उनको मारें, तो फिर तो सबसे पहले उलमा को अवाम को मारना पड़ेगा है? और खुद तो पिटाई खानी नहीं है, खुद तो मार खानी नहीं है, तो इस वजह से ना ऐसी बात करते हैं जो कि अजीब और गरीब किस्म की बात होती है। बहरहाल, तो ये ऐसा नहीं है कि उलमा की जो बात ना माने तो उलमा उठक करके उसको मारना शुरू कर दें, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया, ठीक है। ये नहीं कि हर वक्त जो है वो आपसे सलम ने तलवार निकाल के मारते रहते थे लोगों को, अजीब बेवकूफी जहालत की वजह से है इस किस्म का, अनफॉर्चुनेटली। हम बात करते हैं लोगों से तो पता चलता है ना कि क्या सोच रहे हैं लोग, बहरहाल ऐसी बातें सोचते हैं। Anyway, तो इससे उनका दावा आम बातल हो गया। फिर ये जवाब सुनाकर उनको उनके मशगले में बेहूदगी इसके साथ लगा रहने दीजिए, यानी आपका मनसबी काम खत्म हो गया। ना माने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्र में ना पड़े, हम आप ही समझ लेंगे, यानी हम खुद ही समझ लेंगे। अल्लाह ताला का क्या खिताब है जिसको तफसीरन यहाँ पे बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाने कि मैं इनसे निबट लूंगा। वह मकरू व मकर अल्लाह, वो मकर करते हैं ना, तो उनके जवाब में कौन मकर करता है? मकर से मुराद यहाँ पर तदबीर करना, प्लानिंग करना, ठीक है। उर्दू वाला मकर नहीं, उर्दू में मकर के माने जो है ना वो थोड़े से हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं, थोड़े डिफरेंट कॉनोटेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो अरबी का जो मकर का मतलब क्या होता है? तदबीर करना। तो जिस तरह वो तदबीर कर रहे हैं ना आपके खिलाफ, उसी तरह हम भी तदबीर कर, अल्लाह ताला अपने बारे में फरमाते हैं तो मैं निपट लूंगा उनसे। हाँ, हो सकता है मैं आपको इस्तेमाल करके उनसे निपट लूं, हो सकता है मैं आपको इस्तेमाल किए बगैर ही उनसे निपट लूं। जैसे अल्लाह ताला जो है वो काफिरों को कभी किसी शेर के जरिए से सजा दिलवा देते थे, है ना भाई। अबू लहब का बेटा जो था तो उसको किसने मारा? शेर ने मारा, मुसलमान ने नहीं मारा उसको, शेर ने मारा, ठीक है। तो शेर से किसने मरवाया? अल्लाह ने मरवाया ना। तो अल्लाह ताला तो किसी काफिर को मरवाने के लिए कोई भी जरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी को थोड़ी कि मुसलमान ही को इस्तेमाल करेंगे, जाओ जाकर के उसको कत्ल करके आओ। और जब चाहते हैं तो मुसलमान को इस्तेमाल कर लेते हैं कि हाँ भाई मैदान जिहाद में जाकर उसको कत्ल कर दो, वो मुसलमान को हुक्म होता है, मुसलमान को सवाब मिलता है जब वो मैदान जिहाद में जाकर के उसको कत्ल करता है, लेकिन जब हुक्म आता है तब, वरना नहीं, वरना मुसलमान बैठे बैठाए उठ करके जो है वो किसी को कत्ल नहीं कर सकता जाकर किसी काफिर को। आजकल तो जहालत और गुमराही फैली हुई है ना, इस वजह से मुसलमान जो है वो जाकर काफिर को कत्ल कर देता है, समझता है कि उसको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया था, कोई हुक्म नहीं आया था उसके पास, कहाँ से हुक्म आया था कि जाकर के मुसलमान जो है वो काफिर को कत्ल करके आ गया, किसी काफिर मुल्क में रहने के साथ साथ वो जाके काफिरों को कत्ल करके आ गया, कहाँ से हुक्म आया भाई तुम्हारे पास अल्लाह का? ना तो अल्लाह का हुक्म आया, ना जो है वो किसी मुफ्ती का फतवा आया तुम्हारे पास, ऐसे ही जाकर के तुम कत्ल करके आ गए। जहालत है खाली, और ये कुछ भी नहीं। बहरहाल तो फरमाए के आपका फर्ज मनसबी बात पहुंचा करके दलायल के साथ बलागुल मुबीन करके आपका फर्ज मनसबी मुकम्मल हो गया, ठीक है। और जिस तरह तौरात हमारी नाजिल की हुई किताब थी, इसी तरह ये कुरान भी, जिसकी तकजीब यहूद के कौले मजकूर से असल मकसूद है, यानी वो जो ये बात कह रहे हैं ना कि कोई चीज नाजिल नहीं हुई, तो वो तौरात की नफी तो उनके दिमाग में ही नहीं थी कि हम तौरात की भी नफी कर रहे हैं इस तरीके से। असल में तो उनका ख्याल था कि हम कुरान की नफी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन होता है ना, बात उल्टी गले पड़ जाती है, जो बात करता है ना उसी के गले पड़ जाती है कि भाई तुम जो ये बात कर रहे हो तो इससे तो तुम देखिए, पहले भी एक दफा बात हुई थी एक इसी क्लास के अंदर कि अल्लाह ताला ना काफिरों से ब्लंडर्स करवाते हैं, ब्लंडर्स, ठीक है। ब्लंडर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई गलती करवाते हैं कि जिससे काफिर का केस कमजोर हो जाए, काफिर की दलील कमजोर हो जाए, ठीक है, तो उससे ब्लंडर करवाते हैं। तो क्या ब्लंडर यहां पे करवाया कि ये करना क्या चाह रहे थे, कुरान मजीद की नफी करना चाह रहे थे कि कुरान नाजिल नहीं हुआ, लेकिन जुबान से क्या बक गए, जुबान से क्या बोल गए कि कोई चीज नाजिल नहीं करी अल्लाह ने, ठीक है। जब कोई चीज का लफ्ज इनके जुबान से निकल आया, नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया पकड़ लो इस बात को, इस बात को पकड़ लो और इनके ऊपर पलटा दो कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि कोई चीज नाजिल नहीं हुई, हालांकि इस तौरात को तुम खुद मानते हो। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है ना, ये मकरुल्लाह, अल्लाह ताला की तदबीर जो है ना फिर ऐसे होती है, अल्लाह ही ने ये काम करना है और अल्लाह ही जो है ना वो फिर अपने बंदों से काम करवाते हैं। काश कि हम ये बात समझ जाएं, ठीक है, तो फिर सारी टेंशन जो है ना वो दूर हो जाएगी, जो हम अपना टाइम जाया करते रहते हैं खामखा में, वो टाइम जाया करना दूर हो जाएगा, फिर हम इल्म हासिल करेंगे, सही इल्म, कुरान से इल्म हासिल करेंगे, ठीक है, और फिर हम इत्मीनान से रहेंगे, इत्मीनान से, फितनों के दौर में भी फिर इत्मीनान से रहेंगे, जब कुरान मजीद को सही मानों में पढ़ना और समझना और सीखना शुरू करेंगे और उसकी रोशनी में फिर हम हालात वाकयात को देखना शुरू करेंगे ना, तब हमारी टेंशन्स दूर होंगी और हमें इत्मीनान मिलेगा, ठीक है। देखिए अल्लाह ताला कैसे कर रहे हैं काम, सही है। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने इस तरीके से उनकी बात उन्हीं पर पलटा दी। अच्छा, तो फरमाए कि ऐसी ही किताब है जिसको हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, ठीक है, जो बड़ी खैर व बरकत वाली है। चुनाचे वहादा किताबुन अनज़लनाहु मुबारकुन मुसद्दिकुल लजी बैन यदैही वलितुनज़िर उम्मल कुरा वमन हौला। तो हादा किताबों को कैसे ट्रांसलेट किया, हादा किताब उनको कि ऐसी ही किताब है जिसको हमने, यानी जिस तरह तौरात थी उसी तरह की किताब है जिसको हमने आपसे समय नाजिल किया, जो बड़ी बरकत वाली है, खैर और बरकत, चुनाचे इस पर ईमान लाना और अमल करना मूजबे फलाह व नफाए दारैन है, फलाह का को वाजिब कर देता है इसके ऊपर अमल करना, ठीक है, फलाह को वाजिब कर देता है इस पर अमल करना, और दोनों घरानों की यानी दारैन, दोनों घर, दुनिया का घर और आखिरत का घर, दोनों का नफा, और अपने से पहले नाजिल शुदा किताबों के मुनज्जल मिन अल्लाह होने की तस्दीक करने वाली, ये दोनों सबकी सारी किताबें अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी। क्या लिखा आपने, बेवकूफ नहीं रहेंगे, बेवकूफ नहीं रहेंगे, हाँ बिल्कुल, अगर हम कुरान कुरान मजीद पर फोकस हो जाएं और कुरान मजीद को सही तरीके से फोकस हो करके, भाई आपको अल्लाह ताला ने एक दर्स कुरान दिया है, ठीक है, एक मौका दिया है, एक 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 वेन्यू दिया है, एक रिसोर्स दी है, इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं करते। आज साथियों का बहुत बड़ा मसला है, कभी जो है वो खबरें सुने जा रहे हैं, उधर की खबरें सुने जा रहे हैं, परेशान हुए चले जा रहे हैं, इधर की खबरें सुने जा रहे हैं और ये हो चले चले जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या सच है, क्या गलत है, क्या नहीं। अल्लाह के बंदे, एक दर्स कुरान तुम्हें दिया गया है, मैंने कोई थोड़ी दिया, ये मेरे बस में तो नहीं था कि मैं आपको दरसो कुरान करता, भाई अल्लाह ताला ने अरेंज किया ना, अगर आप समझते हैं कि शैतान ने अरेंज किया तो फिर छोड़ दें, अभी क्विट करें, अभी एग्जिट करें दरसो कुरान को और कहीं और दरसो कुरान तलाश करें, ठीक है ना। अगर शैतान ने इस दरसो कुरान को आपके लिए अरेंज करवाया है, दिस इफ दिस इज वॉट यू थिंक, यू शुड क्विट राइट नाउ, अभी छोड़ें इसको और कहीं और जाएं। लेकिन अगर आप ये गुमान रखते हैं कि अल्लाह की तरफ से अरेंज हुआ है मेरे लिए दरस कुरान, यानी मेरे लिए और आपके लिए, और हर बंदा अपने आप के लिए समझे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मौका मिला है दरस कुरान सुनने का, कुरान को समझने का, कुरान की तफसीर को पढ़ने का, सुनने का, सीखने का, तो अब जो है वो इसको, इसकी कदर क्यों नहीं कर रहे, इसको समझने की गहराई में जाकर के, इसको सीखने की, इसकी तकरार करने की, इसको याद करने की, इसको अप्लाई करने की क्यों नहीं कोशिश करते? दरसे कुरान में आए, खत्म हुआ, बंद करके रखा और लग गए खबरों के अंदर, लग गए खबरों के अंदर, एक से एक जो है वो इधर की खबरें तो उधर की खबरें, तो उधर का बयान तो उसका बयान, या तो उसका जो है वो क्लिप तो उसकी फलानी तो। और भाई दरस कुरान में क्या कुछ समझ में आया तुम्हारे, क्या समझ, क्या दरस कुरान के अंदर पढ़ाया गया है? उसको समझने की कोशिश नहीं, उसके ऊपर फोकस नहीं, ठीक है, उसकी रोशनी में जो है वो, हालांकि हालात हाजरा के बारे में भी कितनी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन गौर करेंगे तो समझ में आएगी ना कि इसमें हालात हाजरा का क्या, इसके अंदर हमें गाइडेंस मिल रही है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? अल्लाह की तरफ से अगर कोई इंतजाम हो गया है, ठीक है, तो फिर उसकी कदर करनी चाहिए, तब हमें फायदा होगा, वरना फिर नाकदरी का नुकसान नहीं होता बल्कि नाकदरी की सजा मिलती है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साथी हैं, कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं है लेकिन हैं, जो कि बाकायदा तकरार करते हैं, बाकायदा नोट्स बनाते हैं, बाकायदा उसको फिर शेयर भी करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। खवातीन इसमें ज्यादा माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी है, ज्यादा काम कर रही होती हैं, लेकिन बाकी सब क्या करते हैं, ठीक है। तो अच्छा एक बात याद रखें, एक और बात अल्लाह ने दिल में फिर याद दिला दी अभी, कि हमारे मशायख की एक बात, पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्ला अलैह दुनिया से तो चले गए, मेहनत कर करके हमारे साथ दुनिया से चले गए, ठीक है, लेकिन अभी तो वक्त ज्यादा नहीं गुजरा ना, चंद दिन पहले की बात है ना, कि उन्होंने भी अपने दरस कुरान के अंदर क्या बताया था, जब सूरह कहफ के ऊपर दरस कुरान दे रहे थे रमजान मुबारक के महीने में, तो क्या फरमाया था कि ये फितने दज्जाल का दौर है और फितने दज्जाल से बचने के लिए कहफ बनाए हैं अल्लाह ताला ने, कहफ बनाए हैं, और वही कहफ, वही फितने दज्जाल से बचेगा जो कहफ में दाखिल हो जाएगा। उन कहफ में से कौन कौन से कहफ थे, वो कौन कौन से कहफ थे, कि इनमें से किसी एक कहफ में जो दाखिल हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा, ये नहीं कि बाहर से दूर बैठा हो जाए वो खाली उसको तमाशा देख रहा होगा उसका, नहीं, बल्कि उसके अंदर दाखिल हो जाएगा, ठीक है, यानी डूब जाएगा उसके अंदर, एंटर हो जाएगा उसके अंदर, विंडो शॉपिंग नहीं कर रहा होगा, होता है ना विंडो शॉपिंग करते हैं ना, तो आप जब बाहर से विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आप दुकान के अंदर तो दाखिल नहीं हो रहे होते हैं ना, उसको तो नहीं कहते कि आप बाहर से आपने शोकेस के ऊपर रखी हुई जो मैनेकिन्स थी उनको देख लिया, उसके ऊपर कपड़े लगे हुए थे और आपने जो है वो दुकान के अंदर रखी हुई चीजों को बाहर से देख लिया, तो कहा जाएगा कि आप दुकान में दाखिल हो गए, नहीं, इसको तो नहीं कहा जाएगा कि आप दुकान में दाखिल हो गए, दुकान में तो उसी वक्त दाखिल होंगे ना जब एंटर हो जाएंगे, जैसे एंटर इंटू द नेट होते हैं हम सारे के सारे, तब आप दाखिल कहलाएंगे ना, तो उसी तरीके से कहफ में दाखिल होना वही बंदा कहलाएगा कि जो के अंदर इमर्स हो जाए, राइट, अंदर घुस जाए, इमर्स हो जाए। तो कौन कौन से कहफ बताए थे, चलें दरस कुरान को आपने पहले लिख दिया, हम वहां से शुरू करते हैं, हरमैन शरीफैन, ठीक है, हरमैन शरीफैन ईमान की हिफाजत की नीयत से जो जाएगा उसका ईमान महफूज होगा फितने दज्जाल से। हम में से कौन है, चंद लोग हो सकते हैं हो जो कि मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा के रहने वाले शायद क्लास में आते हो, लेकिन मेजोरिटी तो नहीं है ना, तो क्या हम जा करके रह सकते हैं अभी? हम में से कोई है जो कि मूव हो जाए मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर, वो भी ईमान की हिफाजत की नीयत से, जॉब की नीयत से नहीं, ठीक है, वो तो हम कर नहीं सकते। मदारिस अरबिया, मदारिस अरबिया में भाई ऑनलाइन ये जो है ना, ये ऑनलाइन नहीं आता उसके अंदर, कल परसों बड़ी तफसील से बात हुई है इसके अंदर, मदारिस अरबिया में इल्म की मेहनत के अंदर फुल टाइम दाखिल होना, मदारिस के अंदर दाखिल होना कहलाएगा, ठीक है, तो मदारिस में तो हम में से कोई है नहीं, वरना यहाँ पे क्यों बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तीसरे हो गए खानकाएं। तो खानकाएं तो भाई अब जो है वो खानकाएं, फिजिकल खानकाएं हैं भी नहीं, और अगर आप वर्चुअल खानका भी ज्वाइन करें यानी किसी शेख के साथ अपना इस्लाही ताल्लुक बना लें, तो वो भी बहुत ही गहराई के साथ इस्लाही ताल्लुक बनाना वो खानका के अंदर दाखिल होना कहलाएगा। वो हम में से बहुत थोड़े से लोग ऐसा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अब आखिर में कौन सा रह गया? दर्स कुरान। ठीक है, जो दर्स कुरान के हलके होते हैं उसके अंदर दाखिल हो जाना। इसके अलावा कोई और है? एक जमाने में तबलीगी जमात भी कहते थे, लेकिन तबलीगी जमात का भी मामला वैसा नहीं है। लेकिन चले ठीक है, तबलीगी जमात के अंदर कौन है जो कह रहे हैं 4 महीने लगा रहा है और वाकई जो है वो वहां से फायदा भी हासिल कर रहा है तकाजों को पूरा करके? ठीक है, तो अगर इनमें से किसी में नहीं दाखिल हो रहे तो क्यों समझ रहे हैं कि आप फितने दज्जाल से बच जाएंगे? कैसे बच जाएंगे फितने दज्जाल से? हर वक्त YouTube के ऊपर क्लिप सुनना और कभी किसी चीज के ऊपर क्लिप सुन लेना और कभी जो है वो कुछ पढ़ लेना, कभी कुछ पढ़ लेना, ये तो नहीं है ना इन कहाफ के अंदर दाखिल होना। हरगिज हरगिज नहीं है ये कहाफ के अंदर दाखिल होना। तो फितने दज्जाल से कैसे बचेंगे भाई? ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इतना आसान किया हुआ है दरस कुरान से जुड़ जाना कि एक क्लिक, एक उंगली का जो है ना वो हल्का सा जुम्बिश करते हैं और उससे जो है वो शुरू हो जाते ही हैं। ठीक है, किताब भी सामने जो है वो स्क्रीन के ऊपर शेयर हो जाती है और घर में भी मौजूद होती है और जो है वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद हो जाती है, हत्ता कि अल्लाह के कुछ बंदे नोट्स बना बना करके भी जो है वो शेयर कर देते हैं, लेकिन इल्तफात ही नहीं क्या कर रहे हैं, इल्तफात ही नहीं कर रहे, घास ही नहीं डाल रहे उसकी तरफ, और लगे हुए हैं जो है वो आलमी हालात के ऊपर जो है वो अपने तदब्बुर करने के ऊपर। तो भाई ये तो ऐसे तो नहीं बचता ना कोई इधर से वो फितने दजाल से। हमने फितने दजाल को पता नहीं कोई चूहा समझ रखा है, चूहा कि मारे आएगा तो हम मार के भगा देंगे उसको। ऐसे ही नबी अलैहिस्सलाम और सारे अंबिया जो है वो अपनी कौमों को डरा करके चले गए कि फितने दजाल से बड़ा कोई फितना दुनिया में आया ही नहीं। हम समझते हैं पता नहीं क्या चीज छोटी मोटी सी होगी। तो भाई मान लें, तौबा कर लें गलतियों से और यकसू हो जाएं, यकसू हो जाएं। ये फितने दजाल मजाक नहीं है। आज तो ये मामला है ना कि हर बात हो रही है मीडिया के ऊपर सिवाय फितने दजाल के, और फितने दजाल भी ना पता नहीं कोई पता नहीं क्या समझ रखा है लोगों ने उसको। पता नहीं कोई कोई वो डायनासोर आ जाएगा, जैसे डायनासोर आ जाएंगे और जो है वो कोई शैतान की शक्ल का कोई जो है वो लोग आना शुरू हो जाएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है फितने दज्जाल के अंदर। फितने दज्जाल के बारे में जो हमें हदीसों से पता चलता है वही हकीकत है, उसके अलावा कोई नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जो है उल्टी सीधी चीजें लिख करके भेजते हैं हमें कि क्या ये ऐसा है, क्या ये ऐसा होने वाला है। अजीब वो गरीब ना वो दिमाग की खराफात जो है वो उन्होंने कागज के ऊपर लिख दी होती है कि भाई फितने दज्जाल में ये सब कुछ होने वाला है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, दज्जाल जो है वो एक नेक दीनदार और बहुत ही ऐसा बुजुर्ग बन करके आएगा कि लोग उसको अपना मसीहा मान लेंगे, अपना रहनुमा मान लेंगे, अपना सियासी रहनुमा नहीं अपना दीनी रहनुमा मान लेंगे दज्जाल को, अपना दीनी मुक्तदा मान लेंगे उसको। ठीक है, तो बहुत 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 मुश्किल सिचुएशन है फितने दज्जाल की। अल्लाह ताला ने बात की समझ अता फरमाए, तो अल्लाह ताला ने कहा फता फरमाए हैं इनको, हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। तो ऐसी ही किताब है जिसको हमने आप पर नाजिल किया है, जो बड़ी खैर और बरकत वाली है, चुनाचे उस पर ईमान लाना और अमल करना मूजब फलाह व नफाए दारैन है, और अपने से पहले नाजिल शुदा किताबों के मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने की तस्दीक करने वाली है। सो हमने इस कुरान को नफाए खलाक और तस्दीक कुतुब इलाहिया के लिए नाजिल फरमाया है। क्या लखनऊ ने, क्या हम सब कुरान की क्लास कर रहे हैं तो हम भी इसमें शामिल होंगे? क्या हम सब कुरान की क्लास कर रहे हैं? आप जो दरस कुरान सुन रही हैं तो हम आपको यही कह रहे हैं कि इसको बहुत ही तवज्जो से सुने और इसको बाद में इसकी रिपीटेशन भी करें, इसके नोट्स भी बनाएं और उसको समझने की भी कोशिश करें, तब आप जो है ना वो इसमें शामिल होंगी, वरना नहीं शामिल होंगी। ठीक है, अच्छा तो ऐसी किताब है कि जिसको हमने आपसे समर्पण चाहिए हो गया, और इसलिए नाजिल फरमाया है कि ताकि आप इसके जरिए मक्का वालों को और आसपास वालों को खुसूसियत के साथ अजाब इलाही से जो कि मुखालिफत पर होगा डराएं। आप इसके जरिए से, यानी आप इस कुरान के जरिए से मक्का वालों को डराएं, मक्का मुकरमा और मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको आप डराएं। ठीक है, क्यों? क्या हिंद के लोग जो थे वो अल्लाह के बंदे नहीं थे? क्या रोम के लोग क्या अल्लाह के बंदे नहीं थे? उनको क्यों नहीं डराएं? मक्का वालों को क्यों डराएं? और जो है वो अफ्रीका वालों को क्यों नहीं डराएं? मक्का वालों को क्यों डराएं? ठीक है, और जो है वो बहरीन भी, तो जमाने में बहरीन भी होता था, बहरीन वालों को क्यों नहीं डराएं? यमन वालों को क्यों नहीं डराएं? मक्का वालों को क्यों डराएं? क्यों भाई, क्यों डराएं मक्का वालों को, बाकियों को क्यों नहीं डराएं? जी, तबलीग स्टार्ट्स फ्रॉम फैमिली, बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने, नौजवान साथी ने मर्दों की साइड पे जवाब दिया, क्योंकि तबलीग जो है वो घर से शुरू होती है। जी बिल्कुल सही फरमाया, खवातीन में भी कि तबलीग घर से शुरू होती है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने अभी हमने पढ़ा ना, ठीक है, तो उसी से तो रिलेटेड है। नबी अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकयात बता करके नबी अलैहिस्सलाम को तो हिदायत फरमा रहे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, ठीक है ना, क्या था? वाल इब्राहिम ले अभी ही आजरा, अपने वालिद से तबलीग शुरू करी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी जो है वो अपने घर से और अपने खैश कबीले से जो है वो तबलीग शुरू करें, जो कि मक्का मुकरमा में रहता है। बाकी लोगों की बारी बाद में आएगी, वहां तक बाद में हम आपको, आपका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, हम जो है तबलीग जो है वो शुरू करते हैं ना, तो दूर दूर दराज के लोगों से तबलीग शुरू करते हैं, अपने घरवालों से बात ही नहीं कर रहे होते हैं। यही अल्लाह ताला और अंबिया कराम की सुन्नत है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो अच्छा, इन्होंने लिखा है कि कैन यू ऑल्सो मेंशन टू एवरीवन द फैक्ट दैट यू हैड सेड रिगार्डिंग हिज वन आई बीइंग डिस्ट्रॉयड लेटर ऑन इन कफरा। हाँ, वो एक हदीस मुबारका है कि जिससे पता चलता है कि दज्जाल जब जब आएगा ना, जब जाहिर होगा जब दज्जाल लोगों के सामने, तो उसकी एक आंख फूटी हुई नहीं होगी और उसके पेशानी के ऊपर कफारा नहीं लिखा हुआ होगा। ठीक है, बल्कि वो बहुत ही ईमान पे और सिद्क पर होगा। ठीक है, ईमान पे और सिद्क पे, यानी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेगा और बड़ी ईमानी बातें करेगा, बड़ी दीनी बातें करेगा, और लोगों को जो है वो दीन की बातें करेगा तो लोग उसको अपना बड़ा मान लेंगे। अरे खाली बातों की वजह से नहीं, और भी उसके पास ऐसी भी चीजें होंगी कि जिसके जरिए से ना, जैसे लोगों की मुश्किल हल कर दिया, परेशानी को, मसीहा का मतलब क्या होता है? परेशानी को दूर करने वाला, मुसीबत को दूर करने वाला, तो लोग उसको अपना मुक्तदा बना लेंगे। उसी हदीस के अंदर है कि लोग उसको अपना मुक्तदा बना देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो ईसाइत, ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा करेगा। ठीक है, फिर वो ईसा अलैहि सलाम का दावा करेगा, तो फिर जो बहुत ही अकलमंद ईमान वाले होंगे वो पहचान जाएंगे कि ये दज्जाल है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो इसने कोई ऐसी गड़बड़ बात नहीं करी थी ना, इससे पहले तो वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, तो वो उसको अच्छा मानना शुरू कर देंगे। लेकिन जब वो ये बात करेगा तो फिर उनको भी पता चल जाएगा कि नहीं, ये तो सही नहीं है। ठीक है, ये ईसा अलैहि सलाम का दावा कर रहा है, हालांकि हदीस में तो ईसा अलैहि सलाम की ऐसी निशानियां नहीं आई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो खुदा होने का दावा करेगा। ठीक है, वो खुदा होने का दावा करेगा, और उस वक्त फिर उसकी जो है ना वो आंख फूट जाएगी और उसके कान कट जाएंगे और उसकी पेशानी के ऊपर कफरा लिखा हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस वक्त भी जो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुके होंगे वो उसको नहीं छोड़ेंगे, वो उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो ईमान वाले होंगे, ठीक है, आम ईमान वाले भी, जो कि नबी अलैहिस्सलाम को पूरा का पूरा अल्लाह का नबी मानते हैं और नबी अलैहिस्सलाम की सारी बातों को हक मानते हैं, किसी एक बात का उन्होंने इनकार नहीं किया होता है, वो ईमान वाले होते हैं। तो ऐसे जो लोग होंगे ना, उस वक्त दज्जाल को छोड़ देंगे जब वो खुदाई का दावा करेगा, लेकिन बाकी लोग उस वक्त भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे भाई? बाकी लोग उस वक्त क्यों नहीं छोड़ेंगे? एक तो उसकी एक फलसफियाना जवाब इसका ये है कि मोहब्बत हो चुकी होगी ना, तो अब मोहब्बत तो अंधी होती है, अब तो कुछ भी नजर नहीं आता जब मोहब्बत हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक एक तहकीकी जवाब इसका क्या होगा, तहकीकी जवाब इसका क्या होगा, क्योंकि वो लोग कुरान और सुन्नत से इल्म हासिल करते ही नहीं होंगे, बल्कि वो भाई हमारी तरह, अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक अता फरमा दे, हमें तौबा कर लेनी चाहिए, तौफीक की दुआएं मांग मांग करके अब कर भी लेनी चाहिए ना, कि मीडिया से खबरें लेने वाले, मीडिया से जो है वो हक और बातिल की समझ हासिल करने वाले, ठीक है। तो कुरान और सुन्नत की तो उनको पता ही नहीं होगा कि कुरान सुन्नत के अंदर क्या चीजें हैं, तो फिर वो दज्जाल को नहीं छोड़ेंगे, वो उस हालत में भी दज्जाल को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वे तौबा कर लें, अब जो है ना ये मीडिया से खबरें लेना, चाहे वो उलमाए हक के बयान क्यों ना हो, उलमाए हक के बयान मीडिया से सुनने वाले नहीं होते भाई, उनके साथ जुड़े जा करके, करीब जाके बैठे जहां पे कोई ना सुनता हो। बल्कि मैं तो आपको तकरीबन तकरीबन जो है ना, वो तकरीबन कह रहा हूँ, वो 100% नहीं, लेकिन वसूख के साथ कह रहा हूँ कि उलमाए हक जो है ना, आप करीब में भी आकर के मुश्किल ही होकर आपको तफसील बताएं किसी चीज की, क्योंकि हालात बहुत खराब हो चुके हैं, हालात बहुत खराब हो चुके हैं, ठीक है। जो लाइमलाइट में आ जाते हैं ना, जो फोकस में आ जाते हैं ना दज्जाली कुव्वतों के, अब वो बात नहीं कर सकते हैं, अब वो बात नहीं कर सकते, ठीक है, सच्ची बात नहीं कर सकते वो, उनको फिर वो सीधी बात नहीं कर सकते वो, क्योंकि उसके बहुत बहुत संगीन किस्म के नतायज उनको, खाली ये नहीं कि अपनी जात में, अपनी जिंदगी में भुगतने पड़ेंगे, वो उसका उनका मसला नहीं होता अपनी जिंदगी में भुगतने पड़ेंगे, बल्कि उसके संगीन नतायज का बहुत सारे लोगों को जो है ना वो नुकसान होगा, तो इस वजह से ना वो अब नहीं बात करते इस तरह की। वही अब बस बात को समझे ना जा करके। तो बहरहाल फरमाया कि जो लोग आखिरत का पूरा यकीन रखते हैं, जिनसे अजाब नहीं कहा था, और आसपास वालों को खसूसियत के साथ अदाब इलाही से जो कि मुखालफत पर होगा, यानी अल्लाह के रसूल के मुखालफत पर जो अदाब इलाही होगा, डराएं, ठीक है, और यूं इंजार आम भी करें, लियकून लिल आलमीना नजीरा, ताकि ये हो जाए तमाम आलमीन के लिए डराने वाली चीज, और आपके अंदाज के बाद, आपके इंतजार के बाद, यानी आप जो ये डराने का काम लोगों को करेंगे ना, तो उसके बाद गो सब ईमान ना लाएं, सॉरी, गो सब लोग ईमान ना लाएं, लेकिन जो लोग आखिरत का पूरा यकीन रखते हैं, जिससे अजाब का अंदेशा हो जाए और उससे बचने की फिक्र पड़ जाए, और हमेशा तलबे तरीके निजात और तायुन हक की धुन लग जाए, ख्वाह किसी दलील नकली से या तजवीज अकली से, ऐसे लोग तो इस कुरान पर ईमान ले ही आते हैं, ठीक है। यानी तफसील से तर्जुमे के दौरान भी इस पर बात हो चुकी है कि जिसके पेश नजर सिर्फ दुनिया के फायदे होते हैं ना, वो इस कुरान मजीद के ऊपर ईमान नहीं लेकर के आता, लेकिन जिसको भी किसी भी वजह से मरने के बाद वाली जिंदगी की फिक्र हो जाती है ना, फिर वो इस कुरान की सारी बातों को मान देता है, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर सारा का सारा यही मामला है कि आखिरत में मिलेगा, आखिरत में मिलेगा, आखिरत में मिलेगा, ठीक है। दुनिया के अंदर मिलने की बातें हैं, लेकिन बहुत ही मुख्तसर, और वो भी कंडीशनल है, लेकिन असल जो फोकस है सारा का सारा आखिरत की जिंदगी के ऊपर है, तो जिसका आखिरत की जिंदगी पर फोकस होगा, वो इस कुरान के ऊपर एतमाद कर लेगा। सूरह कहफ की तिलावत दज्जाल के फितने से महफूज रखेगी, यानी उसके तर्जुमे पर गौर और अमल करके, नहीं, उसकी तफसीर पर गौर और अमल करके, ठीक है। तफसीर से हमें बात समझ में आएगी, तर्जुमे से जो है ना वो बात समझ में नहीं आती है। तिलावत करें आप बेशक बरकत के लिए, लेकिन ये याद रखें कि नबी अलैहिस्सलाम अरबों को फरमा रहे थे कि वो سورہ کہف پڑھیں. اور عرب بھی جو تھے نا, جو صحابہ کرام تھے, وہ بھی قرآن مجید کو تفسیر سے سمجھتے تھے, اگرچہ کہ ان کو عربی زبان آتی تھی. لیکن ابھی ابھی ہی بات ہوئی ہے کہ بہت سی باتیں ان کو اپنی عربی کے باوجود نہیں سمجھ میں آتی تھی, ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کو وہ سیکھا کرتے تھے. تو سورہ کہف پڑھنا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جی وہ بس تلاوت کری اور سورہ کہف سے. بھائی جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے سیکھنے کی, آپ کو صلاحیت دی ہے سیکھنے کی, تو آپ خالی پڑھ کر کے جو ہے وہ کیسے اپنے آپ کو, خالی تلاوت کر کے کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی سمجھ سکتی ہیں کہ جی میں نے کام مکمل کر لیا. سیکھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. تو جو لوگ آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں, جس سے عذاب کا اندیشہ ہو جائے, اسے بچنے کی فکر پڑ جائے, تو ایسے لوگ جو ہے نا قرآن مجید پر ایمان لے ہی آتے ہیں, اور ایمان و اعتقاد کے ساتھ اس کے اعمال کے بھی پابند ہوتے ہیں, کیونکہ عذاب سے نجات کامل مجموعے پر موعود ہے. جو قرآن مجید کے احکامات ہوتے ہیں تو ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہی میرے رب کی طرف سے ہدایت ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. چنانچہ وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں, کیونکہ قرآن مجید کے اندر جن اعمال کا حکم فرمایا گیا ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ نماز کا حکم ہے, ٹھیک ہے. تو نماز پر مداومت رکھتے ہیں, کیونکہ قرآن مجید میں جو الفاظ تھے وہ ہم علی صلاتہم یحافظون, مداومت یعنی حفاظت کرتے ہیں نماز کی. نماز کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا پڑھ لی, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے حفاظت کرنا. حفاظت کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان سے بچتے ہیں. نماز کو نقصان پہنچانے والی چیزیں, بھائی حفاظت کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ گولڈ ہیں, گولڈ کی جیولری ہے آپ کی, صحیح ہے, تو آپ جو ہے وہ گولڈ کی جیولری کو پہن لیں, اور پہن کر کے جو ہے نا وہ آپ بازار میں پھرنا شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا کہ انہوں نے گولڈ جیولری پہن لی ہے, اور یہ سب کو دکھا بھی رہی ہیں کہ ہاں میں نے گولڈ جیولری پہن لی ہے, ٹھیک ہے. کیا اس کے لیے حفاظت کا لفظ استعمال کیا جائے گا کہ بھئی ان کا پہننا جو ہے نا یہی حفاظت ہے, ان کا پہننا جو ہے یہی گولڈ جیولری کی حفاظت ہے, کیا خیال ہے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ جو ہے نا وہ اتنی پاورفل سٹرونگ ہیں نہیں کہ دشمن ڈاکو چور لٹیرا بدماش وہ آپ کو دیکھ کر کے جو ہے نا وہ دور ہٹ جائے, ڈر جائے, ہیں کہ بھئی نہیں یہ تو اتنی کیا کہتے ہیں باڈی بلڈر قسم کے صاحب ہیں یا خاتون ہیں کہ میں اگر ان کے پاس گیا نا تو انہوں نے تو مجھے الٹی لگانی ہے, اور میں تو جو ہے نا وہ دور جا کے گروں گا, میں ان کی گولڈ جولری کیسے چراؤں, تو وہ ڈر جائے نا آپ کو دیکھتے ہی, تو یہ تو ہوگا ہاں بھی انہوں نے پہن لی تو گویا کہ حفاظت ہو گئی اس کی, ٹھیک ہے. لیکن عام بندہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ گولڈ جولری پہن لی تو اس کا مطلب ہے جولری کی حفاظت ہو گئی, بھائی نہیں, ابھی تو وہ آئیں گے اور وہ آپ سے لے کے چلے جائیں گے, تو پھر کیا کرنا ہوگا, حفاظت کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حفاظت کے لیے آپ کو حفاظتی اقدامات کرنے ہوں گے نا, ٹھیک ہے, یعنی یا تو آپ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ کوئی باڈی گارڈز رکھنے ہوں گے, ٹھیک ہے, جو کہ چور ڈاکو لٹیروں کو جو ہے وہ آپ سے دور رکھیں, وہ آپ کی جولری کو چھیننے کے لیے جب آئیں گے تو باڈی گارڈ ان کو مار کے بھگا دیں گے, یا یہ کہ آپ کو کسی گاڑی میں بیٹھنا ہوگا جس گاڑی کے اندر جو ہے وہ ڈاکو نہ آ سکیں, ٹھیک ہے, تو اس کو کہیں گے نا حفاظت کرنا, پہن لینے کو تو حفاظت کرنا نہیں کہیں گے نا. اسی طریقے سے نماز پڑھ لینا یہ حفاظت کرنا تو نہیں کہلائے گا, یہ تو ادائیگی کہلائے گا نا, یہ تو ادائیگی کہلائے گا نا. حفاظت کیا چیز ہوتی ہے؟ حفاظت ہوتی ہے کہ جو دشمن ہوتے ہیں ان کو دور رکھنا, جو نماز کو نقصان پہنچانے والے یا نماز کو چوری کرنے والے, تو یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ شیطان ہوتا ہے
और शैतान के जो जो तौर तरीके होते हैं, शैतान का जो निजाम होता है, ठीक है, शैतान के जो आलात होते हैं, शैतान के जो चेले होते हैं, शैतान के चेले कौन होते हैं? बुरे दोस्त, ठीक है, जो गुनाहों में पड़े हुए हैं, गफलत की जिंदगी में पड़े हुए हैं, ये शैतान के चेले होते हैं, ये शैतान के आलायकार होते हैं। तो उनसे दूर रहना, वरना वो जब आपके ऊपर अपना असर डालेंगे, अपनी सोहबत का असर डालेंगे, तो आपकी नमाज आपसे छीन ली जाएगी, छिन जाएगी आपकी नमाज आपसे, हिफाजत नहीं हो सकेगी उसकी, क्योंकि वो लूट लेंगे आपकी नमाज को। तो बुरी सोहबत से बचना, ठीक है, टेलीविजन, इससे ज्यादा बुरी सोहबत और क्या हो सकती है? टेलीविजन जब आप जब आप देखते हैं, या टेलीविजन आप अपने फोन पे देख रहे होते हैं, ठीक है, गाने, उल्टी सीधी जो है वो खबरें, तो इन सब, ये जो है वो यानी बुरे फिजिकल बुरे दोस्त से अगर ज्यादा बुरे नहीं तो कम भी बुरे नहीं है, ठीक है, तो इनका असर पड़ता है इंसान के ऊपर। और नमाज जो है ना, फिर उसके लिए बिल्कुल एक गैर अहम किस्म की चीज हो जाती है, और बिलाखिर वो खत्म हो जाती है, या उसके अंदर से तवज्जो खत्म हो जाती है, उसके अंदर से जो है वो खुशू व खुजू खत्म हो जाता है, उसकी फिक्र खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये तो नमाज की हिफाजत ना होगी ना, कि जी नमाज अदा तो कर रही हैं लेकिन टीवी भी देख रही हैं, सीरियल भी देख रही हैं, ड्रामे भी देख रही हैं, म्यूजिक भी सुन रही हैं, और जो है वो बुरे दोस्तों के साथ वक्त भी लगा रही हैं, उनके साथ जो है वो मुस्तकिल व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग भी कर रही हैं, ये नमाज की हिफाजत नहीं हुई, ठीक है ना, बस मारे बांधे किसी तरीके से पढ़ लिया, वो अदायगी हुई। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? वहुम अला सलातिहिम युहाफिजून, ठीक है, हमें हिफाजत करनी है, तो हम जो है वो ईमान वालों में, सही मानों में दाखिल होने के काबिल होंगे। तो माने कि ईमान और एतकाद के साथ इसके अमाल के भी पाबंद होते हैं, क्योंकि अजाब से निजात, निजात कामिल मजमूए पर मौजूद है, यानी इसका वादा जो है वो पूरे कुरान के ऊपर ईमान लाना, ठीक है, जो पिछली किताबें हैं उनके ऊपर इजमाली ईमान लाना, कि हाँ तौरात अल्लाह की किताब थी, लेकिन आज की जो तौरात है उसके अंदर उन्होंने अहकामात बदल दिए हैं, तो अब ये नहीं कि अब तौरात को पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं हाँ ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये तौरात पर ईमान लाना कहलाएगा, नहीं, बल्कि तौरात और इंजील के ऊपर ईमान लाना वो क्या है? इजमाली तौर पर, कि हाँ तौरात ये अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब थी, तफसीली ईमान नहीं लाना है तौरात के ऊपर, आज के दौर में जो तौरात मौजूद है उसके ऊपर हमने तफसीली ईमान नहीं लेकर के आना है, क्योंकि उसके अंदर तो गलत गलत बातें शामिल कर दी गई है ना। लेकिन कुरान मजीद के साथ ऐसा नहीं कि कुरान मजीद के ऊपर इजमाली ईमान लेकर के आए, हाँ भाई कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, नहीं, कुरान मजीद के ऊपर तफसीली ईमान लाना है, यानी एक एक लफ्ज, एक एक आयत, एक एक हुक्म, ये सच है और अल्लाह की तरफ से है, ये होगा कुरान मजीद पर ईमान लाना, वरना नहीं। अगर एक भी आयत की नफी कर दी, एक भी हुक्म की नफी कर दी, तो इसका मतलब है कुरान मजीद पर ईमान नहीं लेकर के आए। एक सवाल लिखा है किसी ने कि सो बाय डूइंग हिफाजत ऑफ सलात डज इट मीन कीपिंग अवे दोज फैक्टर्स दैट कुड इवेंचुअली लीड यू टू बिकम बेनमाजी। जी बिल्कुल सही, कीपिंग अवे फ्रॉम दोज थिंग्स दैट कुड इवेंचुअली लीड यू टू लूज योर सलात, ठीक है, फॉर योर सलात टू बी स्टोलन अवे। अच्छा, तो क्या आगे फरमाया कि वो अपनी नमाज पर मुदावमत रखते हैं, जब इस इबादत पर जो कि हर रोज 5 बार मुकर्रर और शाक है मुदावमत करते हैं, तो दूसरी इबादत के जो कि गाह गाह और सहल है, बदरजाए ऊला पाबंद होंगे या बदरजाए औला पाबंद होंगे, ठीक है, यानी नमाज का जिक्र क्यों कर दिया? क्योंकि नमाज रोजाना करने की चीज है, कई बार करने की चीज है, 5 बार, ठीक है, फजर भी आती है इसके अंदर, इशा भी आती है इसके अंदर, जो जॉब पर लोग होते हैं उनके लिए मुश्किल जो है वो जहर का टाइम होता है, वो भी आता है, असर का टाइम और भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सऊदी अरब में आम तौर पर असर के वक्त काम शुरू करते हैं, ठीक है ना। दिन सुबह को सारा सारी सुबह सो रहे होते हैं, रात को जाग रहे होते हैं, ठीक है ना, सुबह को सो रहे होते हैं, और जोहर के बाद जो है वो दफ्तर आना शुरू होते हैं और दफ्तर में काम करना शुरू करते हैं। तो असर की नमाज जो है वो जाहिर है सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज होगी ऐसे बंदे के लिए, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि नमाज जो है ना ये इतनी आसान इबादत है नहीं जितना हम समझते हैं। हम क्यों समझते हैं उसको इतना आसान? क्योंकि हमने उसकी हिफाजत नहीं करनी होती। हम क्यों समझते हैं नमाज को आसान? जो पढ़ने वाले हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। वो क्यों समझते हैं नमाज? बहुत नमाज पढ़ना कौन समझेगा, हम तो पढ़ते ही हैं भाई, पांचों पढ़ते हैं। मैं तो एक भी नमाज भी मेरी कजा नहीं होती। कभी कभार हो गई गलती की वजह से नींद लग गई और आंख नहीं खुली तो मेरी फजर कजा हो जाती है, वरना तो फजर भी कजा नहीं होती, तब पढ़ लेती हूँ मैं। भाई आप पढ़ लेती हैं ना, इस वजह से आप आसान समझती हैं, हिफाजत को थोड़ी करती हैं। हिफाजत तो कभी कोशिश ही नहीं करी, कभी पता ही नहीं था नमाज की हिफाजत चीज क्या, चीज क्या होती है। हिफाजत तो कभी करी ही नहीं, कभी कोशिश ही नहीं करी हिफाजत करने की, तो फिर मुश्किल कैसे होगी? अदायगी को थोड़ी इतना मुश्किल काम होता है। और वो भी अदायगी भी जो है ना वो अल्टीमेटली फिर ऐसी होती है कि जैसे कि ना ही अदा की होती तो ऐसी अदायगी हो रही होती है हमारी, क्योंकि हमने हिफाजत नहीं करी होती है ना। तो वही फरमा रहे हैं कि भाई ये मुश्किल इबादत है नमाज, है ना। क्या है? वह इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अल्लाह ताला कुरान मजीद में नमाज के बारे में फरमाते हैं कि ये तो भारी चीज है सबके ऊपर सिवाय खाशीन के। अपने गरिबान में झांक करके अगर हम देखें तो हम तो खाशीन की फहरिस्त में नहीं दाखिल हो सकते, अपने आप को खाशीन नहीं कह सकते कि हम तो खशियत में अल्लाह ताला की के फिक्र में और खौफ में हर वक्त जिंदगी गुजारे, हम तो ऐसे नहीं है। तो फिर ये नमाज हमारे ऊपर इतनी आसान क्यों है, हालांकि हम तो खाशीन में से नहीं है? अल्लाह ताला हमारा खालिक फरमाता है ये तो मुश्किल है सिवाय खाशीन के, तो हमारे लिए इतनी आसान क्यों है भाई? वजह यह है कि हम अदा तो कर रहे होते हैं, हिफाजत नहीं कर रहे होते इसकी, ठीक है ना। करके दिखाए ना हिफाजत, तब पता चलेगा कि कितनी मुश्किल काम है ये। तो फरमाया कि ये चूंकि इतना मुश्किल काम है तो जिसने ये कर लिया ना तो बाकी उसके लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो वही फरमा रहे हैं हासिल ये, यानी नतीजा इसका ये निकला कि किसी के मानने ना मानने की फिक्र नहीं कीजिए, जो अपना भला चाहेंगे बात मान लेंगे और जो नहीं चाहेंगे नहीं मानेंगे, आप अपना काम करते रहिए, ठीक है। हमारे अजीज जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि उनके शेख ने उनको ये कहा जब शुरू शुरू में बिल्कुल वो नौजवान थे, और हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह ने उनको जो है ना वो सिलसिले की जिम्मेदारी डाली थी, तो बड़े परेशान हो रहे थे वो भी, है ना। जिस तरह हर बंदा एक नेचुरली शुरू में परेशान होता है कि मैं कैसे इतना बड़ा काम करूंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो किसी काबिल नहीं, बड़े परेशान हो रहे थे। तो हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह ने उनको फरमाया कि जिसका काम है वो जाने और जिसने काम करने को कहा है वो जाने, तू भुन दाने। क्या फरमाया? तू भुन दाने। पंजाबी में फरमाया तू भुन दाने, यानी तुम दाने भुनो, तुम अपना काम करो, ठीक है ना। ये काम जो है ना ये तुम्हें तुम्हारे शेख ने करने को कहा है ना, तो शेख तुम्हारे लिए दुआएं करेगा अल्लाह ताला से। और ये काम है किसका? अल्लाह का काम है, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाएंगे, ठीक है ना। तुम ये टेंशन वेंशन खत्म करो, तुम काम करो काम, ठीक है। तो यही बात जो है वो अल्लाह ताला अपने नबी अलैहिस्सलाम को भी फरमा रहे हैं, और नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो सहाबा को भी यही चीज फरमाई, और सहाबा ने आगे यही फरमाई, और आज तक मशायख अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यही बात फरमा रहे होते हैं, काम करो यार तुम काम करो, ठीक है। अच्छा आज मुझे भी पता चला डीपली, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो फरमाए कि आप अपना काम कीजिए, और इस शख्स से ज्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ तोहमत लगाए, ठीक है। क्या था? वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़बन, ठीक है, अल्लाह पे झूठ तोहमत लगाए, और मुतलक नबुवत या खास नबुवत का मुनकर हो, यानी ये तो हो कि भाई हर नबी का इनकार करता हो, या ये कि बाकी नबियों का तो इनकार नहीं करता, जैसे यहूदी बाकी नबियों का तो इनकार नहीं करते थे लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का इनकार करते थे, तो उसके लिए फरमाया खास नबुवत का मुनकर हो, ठीक है। जैसा ऊपर बास का कौल आया है मा अंजलल्लाहु अला बशरिन, और बास का कौल था अब असल्लाहु बशर रसूला, कि क्या अल्लाह ताला ने जो है वो एक बशर को अपना रसूल बना दिया है, इस किस्म की बातें ये काफिर लोग किया करते थे। या यूं कहिए, या यूं कहे कि मुझ पर वही आती है, यानी जो अल्लाह पे तोहमत बांधता है, या यूं बात करता है कि मुझ पर वही आती है हालांकि उसके पास किसी बात की भी वही नहीं आई, जैसे मुसैलमा कज़ाब वगैरह, है ना। इन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही कह दिया था मुसैलमा कज़ाब ने कि मैं भी रसूल हूँ, लेकिन फिर चुप हो गया था, नबी अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद खुल के सामने आ गया कि मेरे ऊपर भी वही आती है। उसके ऊपर भी आता था ना, कोई फरिश्ता आता था, कोई अजीब सा नाम उसने रखा हुआ था उसका। और ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता था मेरे ऊपर टीची टीची फरिश्ता आता है, टीची फरिश्ता। ठीक है, तो ये इस किस्म के बेहुदा लोग जो है वो शुरू से हैं और आज तक जो है वो इस किस्म के चल रहे हैं दुनिया के अंदर। तो इससे ज्यादा जालिम कौन हो सकता है ना, जो ऐसी बातें कहें हालांकि उसके पास किसी बात की भी वही नहीं आई। ठीक है, और इसी तरह इससे भी ज्यादा जालिम कौन होगा जो शख्स की यूं कहे कि जैसा कलाम अल्लाह ताला ने हसबे दावे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल किया है, यानी जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया, कहा कि भाई मेरे ऊपर अल्लाह ताला का कलाम नाजिल हुआ है, इसी तरह का मैं भी लाकर दिखा देता हूँ, जैसे नजर या अब्दुल्ला मजकूर कहता था। यानी इस तरह के लोग थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। नजर बिन हारिस था ना वो, जो कि ऐसी किस्से कहानियां और ये सब बनाता था या कहीं से लेकर के आता, कहता था ये ज्यादा बेहतर है कुरान से, तुम इसकी ये मेरी बातें सुनो तुम। ठीक है, तो ये लोग उस जमाने में भी कहा करते थे, गर्ज ये सब लोग बड़े जालिम है, अजलम, यानी सबसे बड़ा जालिम, जैसे अकबर होता है ना सबसे बड़ा, उसी तरह अजलम सबसे बड़ा जालिम या सबसे जालिम। ठीक है, और जालिमों का हाल ये है कि अगर आप उनको उस वक्त देखें तो बड़ा हौलनाक मंजर दिखलाई देगा, जबकि ये जालिम लोग जिनका जिक्र अभी हुआ है मौत की रूहानी सख्तियों में गिरफ्तार होंगे, और मौत के फरिश्ते जो मलकुल मौत के आवान हैं यानी मददगार हैं, उनकी रूह निकालने के वास्ते उनकी तरफ अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे, और शिद्दत के जाहिर करने को वो यूं कहते जा रहे होंगे, कहते जाते होंगे कि हाँ जल्दी अपनी जानें निकालो, कहाँ बचाते फिरते थे अपनी जान को, तुम कहाँ बचाते फिरते हो ना, निकालो जल्दी से, यानी हैंड इट ओवर टू मी। ठीक है, तो जब किसी काफिर के ऊपर मौत आती है, हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि उसके बदन के अंदर जो रूह होती है ना उसको निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं। ठीक है, अब वो रूह को निकालने के लिए अपना रूहानी हाथ, क्योंकि वो फरिश्ते तो नूरानी मखलूक हैं, तो वो उसके जिस्म के अंदर अपना हाथ दाखिल करते हैं उस रूह को पकड़ करके बाहर निकालने के, लेकिन जो रूह होती है ना ये बदन से निकलना नहीं चाहती है। ठीक है, ये बदन में भागती दौड़ती फिरती है। ठीक है, भागती दौड़ती फिरती है कि ये बाहर किसी तरीके से ना निकल सके, तो उसको निकालने के लिए जब ये उसको पकड़ तो लेते हैं, ये तो नहीं कि वो भाग रही है तो अब वो भाग जाएगी, इनसे इनके हाथ नहीं आएगी, नहीं, इनके हाथ में तो वो आ जाती है क्योंकि ये तो फरिश्ते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि वो जोर लगा रही होती है ना, तो अब जो ये खींचते हैं ना उस रूह को, तो बहुत तकलीफ होती है उस शख्स को, बहुत तकलीफ होती है उसके जिस्म को, तकलीफ हो रही होती है। ठीक है, और ये ऐसी जैसे कि कौन से सहाबी थे, जैसे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने पूछा था, या अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, या कौन थे, कि ऐसे होता है कि जैसे कोई कांटेदार झाड़ी हो, कांटों से भरी हुई झाड़ी है ना, उसके ऊपर जो है, नहीं अली अतान थे वो, खैर जो भी थे, तो उसके ऊपर किसी ने अपना कपड़ा डाल दिया, अब जो कपड़ा पतला सा कपड़ा जैसे दुपट्टा औरतों का, वो कांटेदार झाड़ी के ऊपर डाल दिया गया हो, तो अब तो वो कांटों के अंदर वो इंटेंगल हो जाता है ना, कांटे चुभ जाते हैं ना उसके अंदर, अब कोई उस दुपट्टे को खींच ले, जब वो खींचेगा तो वो दुपट्टा सही सालम तो नहीं वापस आ जाएगा उसके हाथ में, बल्कि वो तो फटता चिरता और बहुत ही, यानी बिल्कुल उसका तो हुलिया ही बिगड़ जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसे रूह निकलती है जालिम की, काफिर की, जबकि इसके बरक्स एक ईमान वाला जो नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम पर एतमाद करके उसने सारी जिंदगी गुजारी थी और मौत तक वो ईमान पर ही बाकी रहा, उसकी रूह कैसे निकलती है कि जैसे बस वो बहुत ही, इसको तशबीह नहीं देना चाह रहा तो है उसके अंदर, लेकिन बहुत ही आसानी के साथ जैसे कोई चीज बस आराम से बाहर निकल आई, ठीक है, तो बस कोई मसला नहीं होता। लेकिन ईमान वाले के साथ जो मरने के वक्त भी ईमान के ऊपर ही कायम, ठीक है, तो ये जो अजियत होती है ना, ये रूहानी अजियत होती है, और अक्सर ये बाहर नजर नहीं आ रही होती है, देखने वालों को नजर नहीं आ रही होती है, क्योंकि ये रूहानी दुनिया के अंदर ये सारी चीजें हो रही होती हैं, और हमारी जो आंखें हैं वो जिस्मानी दुनिया की चीज है, हमें कशफ नसीब नहीं होता, कशफ नहीं हासिल होता। जिनको अल्लाह ताला कभी कशफ दे देते हैं तो फिर वो अपनी कशफ की निगाह से ये चीज देखते हैं, वरना किसी को ऐसी चीज नहीं नजर आती है। ठीक है, आटे में से बाल निकाल, बाल का निकालना, आटे में से बाल का निकालना, दूध में से बाल निकालना वाली तस्वीर, लेकिन नहीं, हदीस में ये वाले तो मुझे नहीं याद पड़ता। खैर, बहुत ही आसानी के साथ मक्खन से बाल निकालना, अच्छा, बहुत ही आसान होता है ईमान वाले के लिए। तो इनको जो है वो जिल्लत की सजा दी जाएगी, यानी जिसमें तकलीफ जिस्मानी भी हो और जिल्लत रूहानी भी हो, इस सबब से कि तुम अल्लाह ताला के जिम्मे झूठी झूठी बातें बकते थे। जैसे हमारे हजरत अब्दुल्ला का भी इंतकाल हुआ ना, आराम से जो है वो लेटे दाएं करवट, और अपना हाथ जो है वो अपने दाएं गाल के नीचे रखा और कलमा पढ़ा, दो दफा कलमा पढ़ा, और बस जान जाने आपने के सुपुर्द कर दी। ठीक है, अच्छा, माथे पे पसीना आना ये अच्छाई की अलामत है, माथे पे पसीना आया, और ये ईमान वाले की मौत की चंद अलामत जो है ना वो आई है। ठीक है, तो इस तरह से अल्लाह ताला जो है वो मेहरबानी फरमा देते हैं। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नशता, ठीक है, ये कुरान मजीद के इन आयात के अंदर भी इस वाक़े का जिक्र है, इस उस के जब रूह निकाली जा रही होती है फरिश्तों से। अच्छा, इस सबब से कि तुम अल्लाह ताला के जिम्मे झूठी झूठी बातें बकते थे, जैसे मा अंजलल्लाहु, के नई नाजिल नहीं है कुछ कुछ भी अल्लाह ताला ने, वो और ऊहिया इलैया, और मेरे ऊपर जो है वो वही नाजिल होती है, और सउन्जिलु वगैरह, कि मैं भी नाजिल कर दूं ऐसी कोई चीज, जैसे कि तुम कहते हो कि अल्लाह ने नाजिल किया तो मैं भी नाजिल करके दिखा सकता हूँ, इस किस्म की बात तुम करते थे ना, तो इस वजह से तुम्हारे साथ ये होगा, और तुम अल्लाह ताला की आयात के कबूल करने से जो कि जरिया हिदायत थी तकब्बुर करते थे। ठीक है, कि नहीं, मैं क्यों मानूं इसकी बात जो कि मेरी तरह का एक इंसान नजर आता है, मैं तो इसकी बात नहीं मानूंगा, इसको तकब्बुर करना कहते हैं। हालांकि दलाइल पूरे हैं, शवाहिद पूरे हैं, लेकिन तुम सिर्फ जिद की वजह से बात नहीं मान रहे हो। ये कैफियत तो मौत के वक्त होगी, और जब कयामत के दिन होगा तो अल्लाह ताला फरमा देंगे कि तुम हमारे पास यारो मददगार से तन्हा तन्हा होकर आ गए हैं, ये क्या तुमने किया है, किधर गए वो सारे तुम्हारे के सारे यारो मददगार तुम्हारे, ऐसे ही आ गए। क्या था वो, हमारा एक दोस्त कहता था, हामिद पिया कुछ ना किया, खाया पिया ना खाया ना पिया यूं ही चल दिया, हामिद पिया कुछ ना किया खाया ना पिया यूं ही चल दिया है, तो कोई इस तरह से फरमाएंगे ऐसे ही आ गए तुम हमारे पास, हैं किधर गए भी वो तुम्हारे सारे के सारे यारो मददगार, जिनके बुनियाद पे तुम तकब्बुर किया करते थे और मेरे रसूलों की बात नहीं माना करते थे, तो ऐसी तना तना आ गए हो, और इस हालत से आए जिस तरह हमने अव्वल बार दुनिया में तुमको पैदा किया था, कि ना बदन पर कपड़ा ना पाँव में जूता, और जो कुछ हमने तुमको दुनिया में साजो सामान दिया था जिस पर तुम भूले बैठे थे, इसको अपने पीछे ही छोड़कर आ गए, साथ कुछ नहीं ला सके, मतलब ये कि माल और दौलत के भरोसे पर ना रहना, ये सब यहाँ ही रह जाएगा। ठीक है, कल ही जो है वो किसी तस्वीर देखी, ये मीयतें पड़ी हुई मस्जिद नबी के बाहर जो है ना, जो वो जब इंतकाल होता है ना किसी का मदीना मुनव्वरा में, तो फिर आपको पता ही है मस्जिद नबी में फिर नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मीयतें आती हैं, तो वो एक जगह पे रख दी जाती है ना, ठीक है, तो वहां की किसी ने तस्वीर खींच के भेजी हुई थी, तो उसमें जो है ना वो एक साइड पे मर्दों की मीयतें रखी हुई थी, मर्दों की मीयतें, ठीक है, ये बात वैसे इससे इतनी रिलेटेड नहीं है इस बात से, लेकिन चूंकि मौत के वक्त की बात हो रही है तो मुझे वो याद आ गया, एक साइड पे मर्दों की मीयतें रखी हुई थी, तो मर्दों के ऊपर जो है ना वो कफन चढ़ाया हुआ था जैसे कि होता है, तो उस कफन में फिर मर्दों का जिस्म भी जो है वो नुमाया हो रहा होता है, ठीक है, पैर भी जो है नुमाया हो रोते हैं, और मोटा है पतला है वो भी नजर आ रहा था। औरतों की जो मियतें रखी हुई थी, उन सारी मियतों के ऊपर सिर्फ कपड़ा नहीं था बल्कि बाकायदा एक आर्च जो बिल्कुल उसको छुपा देती है औरत को ना, ठीक है, वो चीज भी इसके
असल
आसपास,
का वो दुश
म्यूट कर दें इनको, वो भी चीज लगी हुई थी। और किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी कि भाई मरने के बाद तो तुम्हें इस तरीके से पर्दा करना ही पड़ेगा, मरने के बाद तो तुम्हें इस तरीके से, कि मर्दों के जिस तरह से लिबास होता है इस तरह से तुम्हारा लिबास नहीं होगा, बल्कि ऐसे होगा कि जिससे कि तुम्हारी बॉडी की जो साख है वो ना नजर आए। तो तुम जिंदगी में ये क्यों नहीं कर रही हो? जिंदगी में अल्लाह का हुक्म समझ के काम कर लो तो फिर अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएंगे। जिंदगी में पर्दा नहीं करती, जिंदगी में अपने बदन को जो है ना वो नहीं छुपाती। मरने के बाद तो बच्चों, अगर तुम्हारी किस्मत हुई कि तुम्हें अच्छा कफन मिले, वरना तो ये भी नहीं पता कि कफन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अच्छा कफन मिलेगा कि बुरा कफन मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला की रजा की खातिर, अल्लाह के हुक्म पर दुनिया में क्यों नहीं अमल कर लेती कि पर्दा कर लेती। अल्लाह ताला हम सबको बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।
Recording stopped.